ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और शमन पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। लोकसभा में कल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। राजधानी के झंडेवालान एक्सटेंशन और शास्त्री पार्क में आज दोपहर भीषण आग लग गई। दोनों ही घटनाओं में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। और युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने आज नई दिल्ली में ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और शमन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट को आज सदन में पेश किया।
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और शमन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं।
इस रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये रिपोर्ट दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट बताती है कि लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया स्मॉग टावर एक साल में ही खराब हो गया और वो आज बंद पड़ा है। इसी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पता चलता है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि तस्करी में शामिल गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों के पास से लगभग 120 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में एक कार भी जब्त की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीती रात शहर के समयपुर बादली क्षेत्र में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार के द्वारा मधुबन चौक से मुकरबा चौक तक रिंग रोड पर लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि मॉनसून से पहले रिंग रोड को यातायात के लिए बेहतर और गड्ढा मुक्त बनाना है।
12.5 करोड़ की लागत से रिंग रोड का ये हिस्सा ठीक किया जा रहा है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई है, साधुवाद है कि वो अब इतने क्षेत्र को गड्ढा मुक्त पा पाएंगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपराध से निपटने के लिए तकनीकी कानूनी रास्ता अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नए युग में केवल कानून पर्याप्त नहीं हो सकता। वे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में 21वां डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान दे रहे थे। श्री वैष्णव ने उल्लेख किया कि तेजी से हो रहे तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक विकास ने पारंपरिक जांच के संदर्भ को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि नए युग में विशेषकर एआई चुनौतियों से निपटने के लिए सीबीआई को स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षा जगत के साथ अधिक सहयोग करना चाहिए। श्री वैष्णव ने तकनीकी समाधान तैयार करने के लिए देश के शिक्षा जगत, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की ताकत का दोहन करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने सीबीआई से विभिन्न संस्थानों और मंत्रालयों के साथ साझेदारी करके अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक लैब बनाने का आग्रह किया। श्री वैष्णव ने इस अवसर पर सीबीआई अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किए। डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान हर साल सीबीआई के संस्थापक निदेशक धर्मनाथ प्रसाद कोहली को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की उच्च प्रतिष्ठित वक्ता प्रासंगिक विषयों पर अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा करते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एआई संचालित आधार फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन में मार्च महीने में 21.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज कहा कि अक्टूबर 2022 में चेहरा प्रमाणीकरण समाधान की शुरुआत के बाद से 130 करोड़ से अधिक लेनदेन किए गए हैं, जो इसके बढ़ते उपयोग को बताता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। लोकसभा में कल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सदन में विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि सदन की राय जानने के बाद चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है।
The Honorable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for work amendment bill and if required we will take the sense of the house and extend the time for discussion. Government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on work amendment bill. Some political parties are trying to create some excuse so that they can run away from the discussion.
श्री रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस विधेयक के खिलाफ हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं बल्कि न्याय देना है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
ये तो पहले ही टेबल हो चुका है, जेपीसी से वापस आया है। जहाँ तक फॉर्मेलिटी है वो तो अभी चर्चा कब होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो मिसलीड कर रहे हैं तो ये किसी का प्रॉपर्टी हम वापस लेने का बात नहीं किया है, इधर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का।
इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर इस विधेयक के बारे में एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को गुमराह करने का आरोप लगाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सांसद पी संतोष कुमार ने भी विधेयक पर चिंता जताते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के कुछ हिस्से असंवैधानिक है। इस बीच कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसे जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए।
संसद चर्चा करने की जगह है, बिल आएगा तो हम इस पर चाहेंगे कि चर्चा हो, आपाधापी में बिल को पास न किया जाए। और जैसे विपक्ष ने संशोधन दिए थे उन संशोधनों को सरकार को मान लेना चाहिए।
दिल्ली के दो इलाके झंडेवालान एक्सटेंशन और शास्त्री पार्क में आज दोपहर भीषण आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के फायर अफसर एसके दुआ ने बताया कि उन्हें आज दोपहर लगभग 2:27 पर झंडेवालान इलाके में दो व्यावसायिक इमारतों में आग लगने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर 25 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया है।
दोपहर को 2:27 की कॉल मिली थी कि झंडेवालान एक्सटेंशन में फायर है, तो गाड़ियां भेजी गई थी। फायर की ग्रेविटी को देखते हुए इसको मीडियम कैटेगरी का घोषित किया गया। टोटल 25 गाड़ियां यहां फायर बुझाने में लगी थी। अब आग जो है पूरी तरह से बुझ चुकी है, कूलिंग ऑपरेशन जारी है। अभी एज सच अभी कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है।
वहीं शास्त्री पार्क में भी एक बड़े कबाड़ के ढेर में दोपहर में आग लग गई। दमकल कर्मी मनोज त्यागी के अनुसार दोपहर 2:40 पर अग्निशमन विभाग को इस घटना की सूचना मिली। मामले में तत्परता दिखाते हुए 9 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और अब आग पर काबू पा लिया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने आज नई दिल्ली में ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने ई स्पोर्ट्स को एक उभरता हुआ क्षेत्र बताया और इसके प्रचार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक सशक्त खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मेलन से खेल मंत्रालय को ई स्पोर्ट्स के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है।
मिनिस्ट्री की तरफ से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को हम अच्छी तरह से समझे, उसके जो मेन मुद्दे हैं कि उसमें हमें किस तरह से आगे बढ़ना है या उसमें फॉल्स क्या है, उसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं। इस तरह से अगर कॉन्क्लेव होते हैं तो काफी चीजें उसमें से निकल के बाहर आती है।
देश आज प्रोजेक्ट टाइगर की 52 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये एक अग्रणी पहल है जिसने वन्य जीव संरक्षण के परिदृश्य को बदल दिया है। एक रिपोर्ट।
सन 1973 में आज के ही दिन भारत सरकार ने देश की घटती बाघ आबादी की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इस परियोजना ने बाघों की आबादी बढ़ाने और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5 दशकों में ये पहल दुनिया के सबसे सफल वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों में से एक बन गई है। वर्ष 2006 में भारत में बाघ की आबादी केवल 1411 थी, जो वर्ष 2022 में बढ़ 3682 हो गई। दुनिया के लगभग 75% बाघ भारत में हैं। देश में अब 57 बाघ अभ्यारण हैं, जो लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर वन भूमि में फैला है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है जो प्रोजेक्ट टाइगर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा में आज शून्यकाल में कई मामले उठाए गए। शकूर बस्ती से भाजपा विधायक करनैल सिंह ने नियम 280 के तहत मस्जिदों द्वारा सरकारी जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और सरकारी जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की। भोजनावकाश के बाद विपक्षी विधायक सदन में नहीं आए, लेकिन विपक्ष के सदस्यों द्वारा लगाए बिजली कटौती के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सदस्य की गैर मौजूदगी के बावजूद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने स्वीकार किया। ऊर्जा मंत्री ने चर्चा के जवाब में बताया कि 10 साल में आप सरकार 2,72,000 बार बिजली कटौती की गई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में रखरखाव के काम हो रहे हैं, कटौती नहीं की जा रही है। शून्यकाल के दौरान दिल्ली विधानसभा में शकूर बस्ती से भाजपा विधायक करनैल सिंह ने नियम 280 के तहत मस्जिदों द्वारा सरकारी जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और अतिक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की जमीन पर मस्जिद बनी है और मस्जिद प्रबंधन की ओर वक्फ की जमीन बताकर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वे इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर मंदिरों को तुड़वाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। करनैल सिंह के इस बयान पर आप विधायकों ने आपत्ति जताई और सदन में कुछ देर हंगामा किया। हालांकि स्पीकर ने गतिरोध शांत कर दिया। भाजपा विधायक ने दिल्ली के सभी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करवाने की मांग भी की। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिव्यांगजनों की सुविधाजनक आवाजाही के लिए लिफ्ट एक्सकेलेटर लगवाने के लिए प्रबंध करवाए जाएंगे। इसके लिए विभागों से विचार करके सार्वजनिक सुविधाओं तक दिव्यांगजनों की आवाजाही के लिए प्रबंध किए जाएंगे। लक्ष्मीनगर से विधायक अभय वर्मा ने इन सुविधाओं को मुहैया करवाने का मामला उठाया था। इस विषय पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस पर एक नीतिगत फैसला होना चाहिए और जहां भी फुटओवर ब्रिज अथवा मेट्रो स्टेशन अथवा जहां भी सड़क पार करने के लिए जो सुविधा है वहां लिफ्ट लगने चाहिए और जहां भी लगे हैं उन्हें क्रियाशील रहना चाहिए। भाजपा विधायक रविकांत ने त्रिलोकपुरी में पानी सीवर की समस्या को सदन के सामने रखा। मालवीय नगर से भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने अपने इलाके में इसी तरह की समस्याओं को विधानसभा के समक्ष रखा और STP बनाने की मांग की। ये चर्चा बुधवार को भी जारी रहेगी। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और शमन पर CAG की रिपोर्ट पेश की। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। लोकसभा में कल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। राजधानी के झंडेवालान एक्सटेंशन और शास्त्री पार्क में आज दोपहर भीषण आग लग गई। दोनों ही घटनाओं में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। और युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने आज नई दिल्ली में ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।